नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। इसराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच गाजा में चिकित्सकों ने रविवार को आगाह किया कि घायलों की बढ़ती संख्या से जूझ रहे अस्पतालों में ईंधन, दवा एवं अन्य बुनियादी चीजों की आपूर्ति में गंभीर कमी के कारण हजारों मरीजों की मौत हो सकती है। हमास के घातक हमले के बाद छिड़े युद्ध में जमीनी स्तर पर इसराइल से संभावित हमले से पहले तटीय इलाके में घिरे फलिस्तीनियों को भोजन, पानी और सुरक्षित स्थान की तलाश के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले सप्ताह हमास के अप्रत्याशित हमले के बाद इसराइल ने पूरे गाजा क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है और उत्तरी इलाकों को खाली कर फिलिस्तीनियों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया है। इस क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती बढ़ने के साथ इसराइली सेना गाजा की सीमा पर लामबंद हो चुकी है। इसराइल ने कहा है कि वो चरमपंथी समूह हमास को खत्म करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाएगा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लड़ाई शुरू होने के बाद से 2,670 फलिस्तीनी मारे गए हैं और 9,600 लोग घायल हो गए हैं। देश के सबसे बड़े कारोबारी के बेटे डेनियल नोबोआ ने अप्रत्याशित हिंसा के बीच हुए इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रविवार को जीत हासिल कर ली। चुनाव के दौरान हुई हिंसा में एक उम्मीदवार की मौत भी हो गई। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि 96% मतों की गणना हो चुकी है, जिनमें डेनियल नाबाओ को 52.2% और वामपंथी वकील एवं निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरिया के सहयोगी लुइसा गोंजालेस को 47.8% मिले हैं। नोबोआ ऐसे समय में इक्वाडोर का नेतृत्व करेंगे जब देश अप्रत्याशित हिंसा से जूझ रहा है, जिसमें राष्ट्रपति पद के एक उम्मीदवार की भी जान चली गई। राष्ट्रव्यापी अशांति तब पैदा हुई जब लगभग 3 साल पहले हिंसा भड़की थी, लेकिन ये राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंशियो की 9 अगस्त को हत्या के बाद अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अभियानों के प्रमुख ने रविवार को बताया कि सूडान की सेना और शक्तिशाली अर्धसैन्य बलों के बीच पिछले 6 माह से जारी युद्ध में कम से कम 9,000 लोग मारे गए हैं। सूडान में अप्रैल से अराजकता का माहौल है और सैन्य प्रमुख जनरल अब्देल फतेह बुरहान और अर्ध सैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के कमांडर जनरल मोहम्मद हमदान डगालो के बीच का तनाव संघर्ष के बाद युद्ध का रूप ले चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स ने एक बयान में कहा, 6 माह से नागरिकों को खून खराबे और आतंक से कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा, दुष्कर्म और यौन हिंसा की भयावह रिपोर्ट मिलना जारी है। प्रारंभ में लड़ाई खार्तूम तक ही सीमित थी, लेकिन शीघ्र ही ये पूर्वी अफ्रीकी देश के अन्य इलाकों में भी फैल गई, जिसमें दारफूर भी शामिल हैं। ग्रिफिथ्स ने कहा कि युद्ध में कथित तौर पर 9,000 लोग मारे गए हैं और लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर या तो देश में ही या पड़ोसी देशों में सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हुए हैं। लाहौर ज़िला प्रशासन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पार्टी को 21 अक्टूबर को लाहौर के मीनार ए पाकिस्तान में एक रैली करने की अनुमति दे दी है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन से 4 साल बाद स्वदेश लौटने पर अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। नवाज 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ब्रिटेन में अपने स्वनिर्वासन से लौटेंगे। अगले वर्ष जनवरी में होने वाले आम चुनावों में उनके PMLN का नेतृत्व करने की संभावना है। डॉन समाचार पत्र ने रविवार को बताया कि लाहौर के जिला प्रशासन ने PMLN को रैली करने की अनुमति दे दी है। जिला प्रशासन ने कहा, संवैधानिक कार्यालयों, सुरक्षा बलों और न्यायपालिका के खिलाफ कोई भाषण देने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही किसी भी तरह के आपत्तिजनक नारों पर भी प्रतिबंध रहेगा। पश्चिमी अफगानिस्तान में रविवार को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इससे करीब 1 सप्ताह पहले देश के इसी क्षेत्र में आए भूकंप और इसके बाद के झटकों में हजारों लोगों की मौत हो गई थी तथा क्षेत्र में तमाम गांव तबाह हो गए थे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बताया कि रविवार को आए भूकंप का केंद्र प्रांतीय राजधानी हेरात से लगभग 34 किलोमीटर दूर और सतह से 8 किलोमीटर की गहराई में था। सेव द चिल्ड्रन ने कहा कि 4 लोगों की मौत हो गई है और हेरात क्षेत्रीय अस्पताल में 153 घायल लोगों को लाया गया है। सहायता समूह के अनुसार रबात सांगी जिले के बलूच इलाके में सारे मकान ध्वस्त हो गए और कई गांव तबाह हो गए। प्राधिकारियों ने हताहतों की संख्या कम बताई है। हेरात शहर के एक निवासी सैयद काजिम रफीकी ने कहा कि उन्होंने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि अधिकांश मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लोग भयभीत हैं। रफीकी और अन्य लोग रक्तदान करने अस्पताल गए। इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के इजरायली सैनिकों की मदद करने और उनको मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के ऐलान से मैकडॉनल्ड्स सवालों के घेरे में आ गया और उसको आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मैकडॉनल्ड्स इसराइल ने इंस्टाग्राम पर ऐलान किया कि वो अस्पतालों और इसराइल रक्षा बलों के हजारों सैनिकों को मुफ्त भोजन दे रहा है। उसने बताया कि एक दिन पहले ही उन्होंने अस्पतालों और सैन्य इकाइयों को 4,000 भोजन पैकेट दान किए। मैकडॉनल्ड्स इसराइल ने यह भी कहा कि उनकी योजना मैदान और ड्राफ्टिंग क्षेत्रों में सैनिकों को हर दिन हजारों पैकेट भोजन मुफ्त में देने की योजना बनाई है। ये रेस्तरां में आने वाले सैनिकों को दी जा रही छूट से अलग है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।